आज हमारे SBS स्टूडियो में कुछ बहुत ही खास मेहमान आए हैं जो अपना समय, दोस्ती और समर्थन देकर जीवन के अंत की देखभाल यानी कि पैलेटिव केयर यानी कि प्रशामक देखभाल करते हैं, वो भी स्वेच्छा से। तो चलिए इन पैलेटिव केयर वॉलंटियर्स से बातचीत करते हैं और इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह चर्चा सामान्य जानकारी के लिए है और चिकित्सीय सलाह का स्थान नहीं लेती है। चिकित्सीय सलाह के लिए आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, इस भावना को लेकर आज संदीप चितले जी, मनु चंद्रा जी और सौरभ मिश्रा जी अपनी कहानी साझा करने आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका दिल से स्वागत है और अभिनंदन। वेलकम टू SBS स्टूडियोस।
धन्यवाद विनय जी।
धन्यवाद।
सबसे पहले मिलिए संदीप चितले जी से। संदीप अपने 30 साल के कॉर्पोरेट करियर में इससे पहले ANZ और असाही बेवरेज के जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं और फिलहाल विज ग्लोबल के हेड ऑफ कंसल्टिंग हैं, जो एक IT कंसल्टिंग फर्म है। संदीप पिछले 6 साल से ईस्टर्न पैलिएटिव केयर में स्वयं सेवा कर रहे हैं। संदीप जी, बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। पैलिएटिव केयर क्या है और किन विभिन्न तरीकों से ये देखभाल की जाती है?
मैं जो काम करता हूँ पैलिएटिव केयर में, काफ़ी अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वॉलंटियर्स के लिए। मैं कुछ सजेस्ट करूँगा और आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँगा कि ये क्या है और कैसे क्या होता है इसमें। कम्युनिटी सपोर्ट वॉलंटियरिंग मैं करता हूँ, और कम्युनिटी सपोर्ट दो तरीके के होते हैं। वो क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं और केयरर को सपोर्ट करते हैं। और आइडिया उसके पीछे ऐसी है कि ये जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ मेडिकल सपोर्ट होता है, बट कंपेनियनशिप इज़ व्हाट वी प्रोवाइड। एंड केयरर्स को भी रिस्पाइट मिलती है। फिर हम जब वहाँ जाते हैं तो वो अगर उनको कहीं और जाना है तो हमें उनको टाइम अलाउ करते हैं कि वो और भी कुछ जाके कर सकते हैं। बायोग्राफी अलग चीज़ होती है, जहाँ पे जो क्लाइंट है उसकी लाइफ स्टोरी एक छोटी सी बुक में क्रिएट करते हैं, इसलिए कि उनके फैमिली के लिए कुछ रह जाए वापस। अगर वो भी अगर गुजर जाएंगे तो उनके लिए, फैमिली के लिए एक छोटी सी लाइफ स्टोरी उनके लिए रह जाएगी, उनके मेमोरी में
जी याददाश्त रह जाएगी।
तीसरी चीज़ है कि स्माइल मेकर्स कहते हैं, सो फोटोग्राफी। कोई लोग वॉलंटियर करते हैं कि उनकी स्किल है फोटोग्राफी में और वो फोटोग्राफी जाके फैमिली के फ़ोटोज़ लेते हैं, क्लाइंट के फ़ोटोज़ लेते हैं, और काफ़ी बार ये जो फ़ोटोज़ लेते हैं वो बायोग्राफी के स्टोरी में इम्बेड कर देते हैं, तो यू नो मेमोरी बैंक क्रिएट करते हैं बेसिकली। और बाकी जो लोग होते हैं उनके स्किल्स में हेयर ड्रेसिंग, अगर आपकी हेयर ड्रेसिंग स्किल है तो आप जाके कोई क्लाइंट के लिए हेयर ड्रेसिंग कर सकते हो एज अ वॉलंटियरिंग एक्सरसाइज। कोई लोग क्विल्ट्स और ब्लैंकेट्स बनाते हैं तो उसको हग मेकर्स कहते हैं, कि क्लाइंट के लिए आप एक गिफ्ट दे सकते हो। सो अलग अलग तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो आपकी स्किल है, जो आपका पैशन है। तो मेरे पास 3 साल से छोटी सी कवूडल डॉग है,
जी,
काया
जी।
वो काया को मैं अभी लेके पैलिएटिव पॉज प्रोग्राम है जहाँ से मैं उसको भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि कोई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनके लिए डॉग इंटरेक्शन काफ़ी एंगेजिंग हो सकती है। सो यू नो टेकिंग योर डॉग अलोंग टू द विजिट कैन बी अनदर सेंस ऑफ सपोर्ट। सो इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी।
बहुत तरीके हैं लोगों को मदद करने के, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू संदीप जी। सौरभ मिश्रा जी, आपको बता दें कि ये एक टेक गुरु हैं, CEO हैं, डायरेक्टर हैं, संगीत और नाटक के प्रति इनका झुकाव है और पिछले 16 साल से ईस्टर्न पैलेटिव केयर में वॉलंटियर रह चुके हैं। तो सौरभ जी, आपसे समझना चाहूँगी कि आपको ये भला काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू दिस?
ज़रूर प्रीति जी, मैं शुरू का अगर आपको बताऊँ तो मेरे ख्याल से वही अभी तक भी चल ही रहा है। तो 2004 की बात है, हमारे बिजनेस के ही सिलसिले में हमें पैलेटिव केयर के बारे में कुछ पता चला और एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया जो कि एक पैलेटिव केयर एजेंसी को हमने बेचा। उसके पहले मुझे कुछ पता भी नहीं था कि पैलेटिव केयर क्या होता है। वो सॉफ्टवेयर चल पड़ा और उसके अब लगभग सारी जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की पैलेटिव केयर एजेंसीज हैं उसी सॉफ्टवेयर को अब यूज़ कर रहे हैं। तो उसको करते करते फिर एक दिन क्लाइंट से ही रिक्वेस्ट आई कि भाई हमको एक वॉलंटियर मॉड्यूल भी चाहिए इसमें। तो मेरे कान खड़े हो गए कि ये क्या चीज़ है। और इसलिए कि उस समय, ठीक उसी समय, मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है द टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग। लिखने वाले सोग्याल रिनपोशे नाम है उनका। कुछ मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले वो गुजर गए थे। तो जो टिबेटन लोग हैं तो उनका जो मानना है, उनकी जो संस्कृति है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें जो पॉइंट ऑफ डेथ होता है उसको वो पॉइंट ऑफ रिलीज मानते हैं कि सारी ज़िंदगी अगर आप ट्रेन कर सकें तो उसको कोई वो एक रिगपा कहते हैं, उसको अगर आपने पहचान लिया तो उस तजुर्बे को आपने पहचान लिया तो आपको मोक्ष मिल जाता है। तो उस सिलसिले में उन्होंने लिखा था कि इस संदर्भ में जब कोई इस तरह से, जिसको कुछ चंद महीने या चंद हफ्ते की मोहलत बाकी है मरने में, तो अगर आप उस समय उसके साथ अगर आप, जैसा आपने कहा, साथ दें, सहानुभूति दें, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है कुछ। और मेरे भी उस समय विचार इस तरह से चल रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला था और कुछ देने का भी मुझे मन कर रहा था कि मैं कुछ करूं। तो ये सारा कुछ एक साथ कोइंसाइड हो गया है, ज़िंदगी में होता रहता है ना ऐसा। तो मैंने कहा चलो फिर ये जो पैलेटिव केयर में वॉलंटियरिंग की एक बात चल पड़ी है तो मैं उसी को देखता हूँ कि क्या है वो। तो जी मैं पहुंच गया वहाँ पर, मैंने अप्लाई कर दिया, मैं पहुंच गया। खैर इंटरव्यू में उन्होंने मुझे सबसे पहले तो रिजेक्ट कर दिया।
अच्छा,
जिंदगी का पहला इंटरव्यू,
पहली रिजेक्शन।
तो कहती हैं कि भाई, जो नर्स थी वो कहती हैं कि भाई तुम तो बहुत यंग हो।
हाँ।
तुम कहती हैं तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो ये है कि तुम छोड़ जाके भाग जाओगे। तो मैंने कहा क्यों भाई? कहती नहीं, हमने बहुत कुछ इस तरह से देखा है। तो मुझे ना बिल्कुल वो जो सनातन धर्म का जो सारा कुछ है कि भाई मरना जीना कुछ नहीं होता है, ये सब तो चलता रहता है, तो वो सारा कुछ मुझे उसको फिलॉसफी समझानी पड़ी कि भाई ये मेरा विश्वास है। तो उसने कहा ठीक है चलो देखते हैं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुला लिया।
अच्छा।
उसके बाद फिर आगे देखेंगे, मतलब बहुत प्रोबेशनरी बेसिस पे मुझे
रख लिया था।
तो शुरुआत वहीं से हुई कि मैं कुछ करना चाह रहा था, कुछ देना चाह रहा था और मुझे लगा कि इस, जैसे संदीप ने अभी कहा कि एक 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 वो जो बड़ा लोग मतलब बड़े खुल जाते हैं उस समय में और उसमें जो उस खुलेपन में जो उनके साथ एक संबंध बनता है वो कुछ और ही चीज़ होती है।
जी।
तो मोटिवेशन वही रहता है, इफेक्टिव एक कनेक्शन।
जी, कनेक्शन इज द राइट वर्ड। या अब चलते हैं मनु जी के पास और बात करते हैं उनके अनुभवों और विचारों की। साल 2009 में मनु चंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा और अपना करियर एक स्वयं सेवक के रूप में शुरू किया और आगे बढ़ने का रास्ता भी ढूंढा। ये क्षेत्र उनके दिल के बहुत करीब है और उनके हिसाब से ये उनका जुनून है। तो मनु जी, आप जैसे वॉलंटियर्स हैं, सौरभ हैं, संदीप हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, उनके समर्थन के लिए भी कोई सुविधाएं उपलब्ध होती होंगी?
तो उनके समर्थन के लिए हम काफ़ी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। तो जैसे जब भी कोई नया वॉलंटियर हम रिक्रूट करते हैं तो हम उन्हें प्रॉपर 4-5 वीक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो अपना वो रोल निभाने के लिए बाहर जाके। उसके अलावा हम हर महीने कोशिश करते हैं कि एक फोरम रन करें जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि सब पैलेटिव केयर से रिलेटेड हो, और वो फोरम्स हम आउट करते हैं ताकि वॉलंटियर्स आ सके और उन फोरम्स को अटेंड कर सके। उसके अलावा डे टू डे कम्युनिकेशंस होती हैं उनके साथ में। तो हमारे हर वॉलंटियर्स जो हर दिन किसी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बाहर जाते हैं तो वो वापस आके हमें एक रिपोर्ट भेजते हैं कि आज ऐसा हुआ उस क्लाइंट के साथ में या आज मैंने ये नोटिस किया. तो हम हमारा वो डेली का एक कम्युनिकेशन होता है हर वॉलंटियर के साथ में जो कि हमारे लिए एक अपडेट होता है. कई बारी नर्सेज और डॉक्टर्स या जो सपोर्ट वर्कर्स होते हैं वो हर रोज़ वहाँ नहीं जा पाते हैं देखने के लिए, पर हमारे वॉलंटियर्स जो हमेशा आना जाना करते रहते हैं वो हमारे लिए एक तरह से हमारी आँखें और कान होते हैं जो कि वहाँ जाके वो सब कुछ देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है. और वो एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन होता है हमारा उनके साथ में. तो उस तरह से हम उनको सपोर्ट करते हैं. सो हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और हमारे हमारी टीम में 4 वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं ताकि कोई भी वॉलंटियर अगर किसी भी विषय में उनसे बात करना चाहता है किसी भी समय हम उनको वो मेंटल सपोर्ट देते हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है. और हम सभी प्रॉपर ट्रेंड हैं उसके लिए, हम अलग अलग ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं ताकि हम उनको उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें उस टाइम पे.
सो फुली क्वालिफाइड हैं. चलिए बढ़िया. सौरभ जी, आपके अनुभव के आधार पर बताइए कि केयर लेने और देने दोनों के फायदे क्या हैं और उसे बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना चाहिए.
देखिए, एक परिवार के नज़रिए से अगर आप देखिए, मतलब अगर परिवार में कोई सदस्य है जिसको जिसको एंड स्टेज का जिसको पैलेटिव केयर में रखा है तो जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल केयर हो रहा है, जो संदीप बता रहे थे, मेडिकल केयर तो होता ही होता है. तो हम लोग उसके साथ ही हम लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं. जो पैलेटिव केयर एजेंसीज हैं उनके ज़्यादातर नर्सिंग केयर वहाँ से भी होता है तो उसका एक सप्लीमेंट्री हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है. मैं देखता हूँ क्या प्रीति जी कि यूँ सोचिए कि किसी की ज़िंदगी में अनजान, मैं भी अनजान, वो भी अनजान, लेकिन आप सोचिए ना कि जो इस तरह से है किसी परिस्थिति में तो लगभग उसकी ज़िंदगी में जितना कुछ चल रहा है, जितनी कहानियाँ चल रही हैं, जितने संवाद चल रहे हैं, सब इसी को लेकर चल रहे हैं कि भाई अब उसका समय कम समय अंत समय आ गया है. हम उसमें उस माहौल में घुसते हैं, हमें कोई पता ही नहीं कि कौन है. मतलब ये जो बाकी सब लोग ऑलरेडी ग्रीविंग कर रहे हैं, हमें वो ग्रीविंग नहीं, हम ग्रीविंग नहीं कर रहे. तो हम बड़े सरलता से एक दोस्ती बना लेते हैं ऐसे ऐसे लोगों से. तो जैसे एक बात होती है कि लोगों को एक धारणा होती है कि इस तरह के काम में यू नो बहुत कठिनाई होती होगी, इमोशनल कठिनाई होती होगी. ऐसा मुझे तो नहीं लगा, बल्कि मुझे लगा कि बड़ी अच्छी अच्छी दोस्तियाँ मेरी हुई हैं पिछले 16-17 साल में. मेरे ख्याल से मैं 15-20 लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, रहा हूँ, और हर बार लगा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा रहा. ठीक है, ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं. लेकिन तो देने में वो फ़ायदा है केयर देने में कि वो यू नो एक दोस्ती बन जाती है हमारी. और दोस्ती के अलावा कितना कुछ सीखने को मिलता है. आप सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपको लगता है कि उतार चढ़ाव है, यू नो इतना बड़ा कुछ हो रहा है, तो जब आप किसी के साथ ऐसे बैठते हैं जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि भाई मैं ठीक हूँ,
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है.
क्या बात है, क्या बात
जी,
बिल्कुल
जी जी. संदीप जी, इस सफ़र के दौरान आपका सबसे यादगार अनुभव क्या रहा, एनी मेमोरेबल मोमेंट्स और हाइलाइट्स दैट यू विश टू शेयर विद अस?
मेरा एक क्लाइंट था, मुझे काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस मिला उस क्लाइंट से. वो ऑलमोस्ट 40-50 साल से ब्लाइंड है और अकेले रहता था. और जब उसका पैलेटिव केयर स्टेज में आया तभी भी पूरी तरह अलग अकेला था. उसकी ज़्यादा फैमिली कोई नहीं थी. और मैं जब पहली बार उसको मिलने गया तो मैंने कभी ब्लाइंड घर के ब्लाइंड आदमी के घर कभी देखा नहीं था, और वो भी अकेले आदमी का. तो उसका घर कम्प्लीटली केओटिक था, मगर उसको पता था कि हर जगह हर चीज़ कहाँ पे है. और वो एक रेडियो प्रोग्राम चलाता था और मुझे इतना फैसिनेशन था कि ये एक आदमी अकेले ऐसे स्टेज में कैसे रह सकता है. तो उसने काफ़ी कुछ मुझे बताया कि वो कैसे करता है. और मैं उसको कॉफ़ी के लिए बाहर ले जाता था. फिर धीरे धीरे जब उसको और भी हेल्प की नीड हेल्प रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं उसकी लॉन्ड्री के लिए ले जाता था उसके लिए, और यू नो, और ऐसी भी स्टेज आई कि फाइनली उसको हॉस्पिस में ट्रांसफ़र करना पड़ा क्योंकि उसके लिए केयरिंग, फुल टाइम केयर की रिक्वायरमेंट थी, मुझे उसको साइन इन करना पड़ा। तो कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था कि उसको साइन इन करे, मगर मेरी और उसकी जो रिलेशनशिप बनी उस पीरियड में, इतनी यूनिक सी रिलेशनशिप बनी कि आज तक मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और उसने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई कि इतने चीज़ों की हर्डल्स होके भी आप कैसे डिग्निटी से रह सकते हो राइट टिल द एंड। और ऐसे जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ये वॉलंटियरिंग में, मेरे ख्याल से अनलेस आपका कोई नियर रिश्तेदार अगर ऐसे कुछ थ्रू जा सकता है तो हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस दीज आर वन ऑफ यूनिक लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस।
प्रीति, मैं इस बात पे एक और बात कहना चाहता हूँ, खास करके जो हमारे श्रोता हैं इस प्रोग्राम के, जो हिंदी बोलने वाले ऑस्ट्रेलियन इंडियंस हैं, उनको एक पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे संदीप ने ये बात बताई, मैंने देखा है कि अब देखिए कितने साल मुझे भी हो गए इसमें करते हुए, अक्सर ये होता है कि वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपको पता है किसी इंडियन ओरिजिन पर्सन से हमारा ये इंटरेक्शन पहली बार हुआ है, मतलब इतने एक्सटेंसिव इंटरेक्शन इतना जो है वो पहली बार हमारा हुआ है, वरना ठीक है यू नो चलते फिरते लोग दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है ना, कई बार मतलब ऐसे परिवारों में ये वो कहते हैं हमसे ये बात, तो मुझे लगता है जैसे हम एक समुदाय जो हमारा है काफ़ी बड़ा भी हो गया है यहाँ पर पिछले कितने 20-25 साल में, आपने भी देखा हमने भी देखा कितना ज़्यादा हमारा समुदाय बढ़ गया है। और हम जब वॉलंटियरिंग के बारे में, जब गिविंग बैक के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर हमारा ध्यान सीधे इंडिया की तरफ जाता है कि हमें वहाँ कुछ करना है, और वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरी गुजारिश इतनी छोटी सी है कि भाई इस देश में हम लोग रह रहे हैं, तो इस देश के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, और इस देश के लोग भी हमसे कुछ उम्मीद करते हैं कि हम भी भाई ज़्यादातर हम एज एन इंडियन कम्युनिटी हम लोग वी आर रिलेटिवली वेल ऑफ, तो हमें भी मुझे लगता है कि हमें भी एक इस तरह से एक विचार आना चाहिए कि इस कम्युनिटी में भी हम कुछ दें, और इससे बढ़िया आप क्या दे सकते हैं, अपना साथ, अपना संगत, और उससे कितना हमारा मतलब कितनी हारमोनी बनती है आप सोच सकते हैं।
आखिरी सवाल आप सबसे है, जो चाहे उसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में समय निकाल कर कुछ भला करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, गिव, दे वांट टू गिव बैक, जैसे आपने कहा, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो पैलेटिव केयर में वॉलंटियर करना चाहते हैं? मनु जी, आपसे शुरुआत करें।
एक्चुअली कोविड के बाद लोगों ने ये रियलाइज किया है, या लोगों में अब ये लोगों ने ये करना शुरू किया है कि अब वो ये जो पैलेटिव केयर है वो अपने घर पे वो समय बिताना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल। तो अब लोग हॉस्पिटल में कम जाते हैं, अपने घरों पे वो समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि घरों में उनके पास में उनका पूरा परिवार है, उनके पेट्स हैं जिनके साथ वो अपना समय बिताते हैं। हॉस्पिटल में लिमिटेड विजिटिंग आवर्स है, लिमिटेड लोग आप ले जा सकते हैं, तो वो सर्विसेज घरों में हमें प्रदान करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। जितना हम कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह का भी सपोर्ट हम दे सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं देने के लिए कम्युनिटी में, पर वॉलंटियर्स भी अपना एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं इसमें। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने उन इंडियंस से जो यहाँ पे है कि वो अपना थोड़ा समय निकाल सके और वो जाके हफ्ते में एक घंटा या दो घंटा जो भी वो निकाल सके कुछ एक गिविंग बैक, हम बातें कर रहे हैं वो उसमें अगर वो अपना थोड़ा टाइम दे सके, इट विल बी रियली गुड फॉर द होल कम्युनिटी।
जी,
सो थैंक यू।
प्रीति जी, देखिए जैसा मनु ने कहा, मैं भी हफ्ते में एक से दो घंटे मैं ये काम करता हूँ। उतना समय तो कोई भी निकाल लेता है,
निकाल सकता है।
निकाल सकता है।
जहाँ चाहे वहाँ
रहा है। बिल्कुल। अब बात यह है कि उसका जो हमें जो रिटर्न जो मिलता है ना, जो आप एक वो इतना डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, इतना डिस्प्रोपोर्शनेट होता है. अगर तकलीफ अगर कोई है इस चीज़ में, तो वो ये है कि मुझे बहुत चुभता है वो, कि जिस परिवार में इतना कुछ हो रहा है वो इतने इतने कृतज्ञ हो गए हैं कि भाई मैं सोचता हूँ भाई मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक घंटा, वो तो कोई भी कर सकता है. मैंने आपको आपके परिवार में ठीक है, अगर मैं हफ्ते हफ्ते में एक घंटा आकर के बैठ रहा हूँ किसी के साथ और वो चीज़ मान लीजिए 6 महीने चली, तो क्या हो गया प्रीति जी. लेकिन यू नो उसके अंत में उसके उसके दौरान इतना ज़्यादा हमको यू नो ग्रैटिट्यूड मिलता है क्लाइंट से भी, उनके परिवार से भी. तो वो बात मुझे हमेशा अखरती है कि नहीं भाई ऐसी भी कोई बात नहीं है. और फिर यही बात फिर जहन में आती है कि भाई इतनी छोटी सी, अगर इतनी इतना सच सिर्फ करने से किसी को इतनी खुशी मिल रही है, तो और लोग भी आओ ना भाई, करो भाई. ये बस बात रह जाती है.
जी, जी, संदीप जी.
हाँ, मुझे ऐसा एक इंटरेस्ट है कि जैसे इंडियन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रही है, वैसे पैलिएटिव केयर की ज़रूरत भी इंडियंस को इंक्रीजिंगली लगने वाली है आगे,
आज नहीं तो कल.
और अगर इंडियन वॉलंटियर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, तो ऐसे भी दिन आएंगे जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और मेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी, तो अच्छा होगा ऐसे कि मेरे जैसा कोई मेरे लिए कोई अगर कंपेनियनशिप प्रोवाइड करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा,
जो आपसे आपकी भाषा में बात कर सकता है और आपकी
कल्चरल सेंसिटिविटी जो हो सकती है जो कनेक्शन में, वो इम्पोर्टेंट है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल, दोज कनेक्शंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ओनली दे कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू कल्चरली. So it's important to get that diversity in the volunteer community, to support the diversity in the community that we are seeing across Australia.
जी जी संदीप जी, मनु जी और सौरभ जी, अपने अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और SBS हिंदी की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएँ.